आप हैं SBS हिंदी के साथ।
शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक समझौते से ऑस्ट्रेलियाई बाजार में भी उछाल। भारत के सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून को एक और चुनौती। और एडिलेड इंटरनेशनल में बार्टी की का मुकाबला मार्केटा से आज। और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री ब्रिगेट मैकेंजी ने उनके बतौर खेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान 100 मिलियन की राशि सामुदायिक खेलों के लिए आवंटित करने के फैसले का बचाव किया है। ऑस्ट्रेलियाई नेशनल ऑडिट ऑफिस की समीक्षा के बाद उनका यह बयान आया है। इस समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने धन का दुरुपयोग किया है और ज़्यादा पैसा साझा सरकार की ऐसी चुनावी सीटों पर लगाया गया जहाँ कांटे की टक्कर हो सकती थी। सीनेटर मैकेंजी ने एबीसी से कहा कि उनके कार्यालय ने कुछ भी गलत नहीं किया।
The ANAO report verified that no project that received funding was not eligible to receive it. It also confirms that no rules were broken in this program. The reality is that there are hundreds of applications still sitting there who were also deserving of funding, community clubs right across the country.
उधर लेबर पार्टी से एमपी टोनी बर्क ने कहा है कि सीनेटर मैकेंजी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस तरह के अनुदान में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का हाथ होने का भी आरोप लगाया।
There is no doubt Bridget McKenzie needs to go. You can't get a report like that and remain a minister in the Commonwealth government. It also says something about Scott Morrison. Bridget McKenzie was doing exactly what Scott Morrison wants, to treat taxpayers' money as a personal marketing fund for Scott Morrison.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से दुनिया भर में शांति और स्थिरता आएगी। इस समझौते से विश्व की इन दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीब 18 महीने से चल रहा व्यापारिक युद्ध खत्म हुआ है। चीन ने साल 2017 के स्तर से 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर ज़्यादा के अमेरिकी सामान के आयात को बढ़ावा देने और बौद्धिक संपदा नियमों को मजबूत करने का वादा किया है। बदले में अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर लगाए गए नए शुल्कों में से कुछ को आधा करने का वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है और ये दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
I want to thank President Xi, a very, very good friend of mine. We're representing different countries. Our negotiations were tough, honest, open, and respectful, leading us to this really incredible breakthrough. Most people thought this could never happen.
चीन के वाइस प्रीमियर ल्यू हर ने कहा कि वो इस समझौते से एक बड़े फायदे की उम्मीद करते हैं।
This is a mutually beneficial and win-win agreement. It will bring about stable economic growth, promote world peace and prosperity, and is in the interest of the producers, consumers and investors in both countries.
ऑस्ट्रेलिया का शेयर बाजार आज 7,000 अंक से ज़्यादा के रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया। माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच अंतरिम व्यापारिक समझौते का असर है। S&P और ASX 200 आज सुबह 2/3 अंकों तक ऊपर पहुंच गया। इसके कुल 7,041 अंकों की ऊंचाई को इसने छुआ है। बाकी सामान्य इंडेक्स भी आज इनमें उछाल देखा गया है। सोने के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। मेलबर्न और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश और आंधी की वजह से विक्टोरिया के पहाड़ी इलाकों और पूर्वी गिप्सलैंड इलाके में आग कुछ कम हुई है। दमकल कर्मियों को उम्मीद है कि बारिश से उन्हें राज्य भर में आग पर काबू पाने में मदद मिलेगी। इनमें से कुछ आग नवंबर के अंत से जल रही हैं। हालांकि मौसम विभाग को आशंका है कि मेलबर्न बारिश के बाद एक बार फिर धुएं की चपेट में आ सकता है, क्योंकि बारिश से हवा की गुणवत्ता में बस तात्कालिक सुधार ही हुआ है। ब्यूरो की डायना एडी ने बताया कि बुशफायर का धुआं सप्ताह के अंत तक एक बार फिर शहर में लौट सकता है।
That rainfall has helped with the smoke haze that's been impacting much of Victoria over the past few days. So air quality has improved. That being said, we're likely to see a recurrence of that poor air quality as we head towards the weekend.
रूस की पूरी सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक परिवर्तनों की घोषणा के बाद सरकार इस्तीफा दे देगी। प्रधानमंत्री डिमित्री मेदवेदेव ने सभी को अचंभे में डाल देने वाली खबर दी। इससे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने वार्षिक राष्ट्र के नाम संबोधन में देश में व्यापक संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव रखा। डिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के इन प्रस्तावों से सत्ता संतुलन में काफ़ी अहम बदलाव आएंगे। उन्होंने कहा कि ये बदलाव जब लागू हो जाएंगे तो न सिर्फ संविधान के सभी अनुच्छेद बदल जाएंगे बल्कि सत्ता संतुलन और ताकत में भी बदलाव आएगा। एग्जीक्यूटिव की ताकत, विधानमंडल की ताकत, न्यायपालिका की ताकत, सब में बदलाव होगा, इसलिए मौजूदा सरकार ने इस्तीफा दिया है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सीनेट ट्रायल के लिए महाभियोग का अभिलेख प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव को 193 के मुकाबले 228 मतों से पास किया गया। अब राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाली सीनेट यह तय करेगी कि उन्हें दोषी ठहराकर उनके पद से हटाया जाए या नहीं। सदन की सभापति नैन्सी पेलोसी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को पद से हटाए जाने की संभावना कम है क्योंकि ये ट्रायल लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए था।
Make it be very clear that this president will be held accountable, that no one is above the law, and that no future president should ever entertain the idea he can do whatever he wants.
इस बीच ट्रंप प्रशासन ने दोहराया कि महाभियोग का मुकदमा समय की बर्बादी है। व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव होगन गिडले ने कहा कि सुश्री पेलोसी ने ये पूरा मामला अपने राजनीतिक लाभ के लिए खड़ा किया।
The whole process has been proven to this point to be a sham and illegitimate. The president has done nothing wrong. The articles of impeachment don't even allege a crime. They're just made up out of whole cloth, which is pretty typical. Nancy Pelosi now has been proven to be purely political as she walks out of the chamber fist pumping.
और अब खबरें भारत से। ओडिशा में कटक के पास सालागांव और नरगुंडी स्टेशन के बीच मुंबई भुवनेश्वर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस ट्रेन ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद 8 कोच पटरी से उतर गए। इस ट्रेन दुर्घटना में करीब 15 लोगों के घायल होने की खबर है, 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना आज सुबह 7 बजे की है। दुर्घटना स्थल पर स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। गंभीर रूप से घायल लोगों को कटक मेडिकल कॉलेज एडमिट कराया गया। बाकी 11 का इलाज पास के ही अस्पताल में किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसके खिलाफ याचिका दाखिल की है। याचिका में CAA के नोटिफिकेशन पर रोक की मांग की गई है। बता दें कि 10 जनवरी को देश में CAA कानून 10 जनवरी से लागू हो गया है और इसके साथ ही देश में NRC लागू करने की सरकार की क्या योजना है, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ही यह याचिका भी दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से पूछे कि क्या देश भर में NRC लागू करने की सरकार कोई तैयारी कर रही है, इस बाबत केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जाए। नागरिकता संशोधन कानून और अपनी दूसरी मांगों को लेकर दिल्ली के विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन भी लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में JNU छात्र संघ के अध्यक्ष ऐशी घोष जामिया विश्वविद्यालय पहुंची। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उनके इस आंदोलन के बीच कश्मीर को नहीं भूला जा सकता।
इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कश्मीर को पीछा और उनका बात नहीं भूल सकते। उनके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वही से इस सरकार ने शुरू किया था कि हमारे संविधान को कहीं ना कहीं हमसे छीना जाए और उनको भूलते हुए उनको अलग करते हुए हम अपना आंदोलन को कभी नहीं जीत सकते।
वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से दोहराया है कि अर्जुन के बाण आज के किसी भी हथियार से आधुनिक थे। उन्होंने उड़न खटोले की बात की और इससे पहले भी वो इस तरह की बात कर चुके हैं। उनके इन बयानों पर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि वो इस बारे में किसी से भी बहस को तैयार हैं।
यू डोंट बिलीव दैट देयर वाज उड़न खटोला, यू डोंट बिलीव दैट संजय गेव द एंटायर डिस्क्रिप्शन टू धृतराष्ट्र, यू डोंट बिलीव दैट द एरोज व्हिच अर्जुन यूज्ड वर सो पावरफुल व्हिच कैन बी कंपेयर्ड विद द बेस्ट इन द करंट टाइम्स। Madam, I subscribe to Indian history, Indian culture. I am proud of it. I can join issue with anyone. It is so easy to say it is unscientific.
और अब डॉलर का हाल। आज यानी गुरुवार को यह खबर लिखे जाने तक भारतीय रुपयों में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 48.87 थी, जबकि अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 69 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। एडिलेड इंटरनेशनल के क्वार्टर फाइनल में आज रात ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी एशली बार्टी का मुकाबला चेक गणराज्य की मार्केटा वांड्रोसोवा से होगा। पिछले साल फ्रेंच ओपन में के फाइनल के बाद ये पहली बार होगा कि ये दोनों महिला खिलाड़ी आमने सामने होंगी। आपको बता दें कि बार्टी ने तब मार्केटा को 6-1 6-3 के प्रभावी स्कोर से हराकर पेरिस में अपना इकलौता ग्रैंड स्लैम जीता था। आज मेमोरियल ड्राइव में भी वो कुछ ऐसा ही दोहराने की कोशिश करेंगी। बात क्रिकेट की, रोहित शर्मा को आईसीसी के साल 2019 की एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। पिछले साल रोहित ने 7 शतक जमाए थे, जिनमें से 5 विश्व कप 2019 के दौरान आए। इसके अलावा भारतीय कप्तान विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर पुरस्कार से नवाजा गया है। और अब डालते हैं नज़र कल यानी शुक्रवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में कल आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में धूप के आसार हैं। अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में छिटपुट बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं ब्रिस्बेन में बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कोहरे के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। खबरों में आज इतना ही।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं।